अंदर से फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। आर्यन ने दरवाज़ा खोला। कमरा एकदम सलीके से साफ था, बिस्तर ठीक से लगा हुआ, अलमारी बंद, कोई अव्यवस्था नहीं। और सबसे अहम बात, सानवी वहाँ नहीं थी। कहाँ हो तुम? वो बुदबुदाया। अब उसकी चिंता बढ़ गई। उसे याद आया कि रात को दोनों के बीच थोड़ी बहस हुई थी। कोई बड़ा झगड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी सानवी का इस तरह बिना बताए चले जाना उसे खटक रहा था। उसने तुरंत फ़ोन उठाया और सानवी को कॉल किया। कुछ रिंग्स के बाद फ़ोन उठा। मैं रेस्टोरेंट पहुंच चुकी हूँ, सानवी की आवाज़ आई, शांत लेकिन थोड़ी दूरी लिए हुए। आर्यन चौंका, इतनी सुबह? हाँ, सानवी ने सामान्य सा जवाब दिया, काम बहुत है इसलिए जल्दी आ गई। इससे पहले कि आर्यन कुछ और पूछ पाता, कॉल कट चुकी थी। आर्यन कुछ पल फ़ोन को देखता रहा। मन में बहुत से सवाल थे, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं। उधर रेस्टोरेंट में सानवी काम में लगी हुई थी। रिया उसके पास ही खड़ी थी। किसका फ़ोन था? रिया ने कैजुअली पूछा। आर्यन का, सानवी ने बिना ज्यादा भाव दिखाए कहा। घर पर ढूंढ रहा था मुझे, रिया मुस्कुरा दी। बिल्कुल जीजू का मन नहीं लगता होगा तुम्हारे बिना। सानवी ने उसे एक नज़र देखा, थोड़ी सख्त, थोड़ी थकी हुई। मन नहीं लग रहा होगा इसीलिए बेचारे ढूंढ रहे हैं, रिया ने मजाक उड़ाते हुए कहा। सानवी ने गहरी सांस ली। रिया, जब तू सारी सच्चाई जानती है कि हमारी शादी सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, तो इन बातों का कोई मतलब नहीं बनता। उसकी आवाज़ में हल्की सी कड़वाहट थी। तुझे अच्छे से पता है, वो आगे बोली, हमारा रिश्ता असल में है क्या और क्या नहीं। रिया चुप हो गई। वो समझती थी कि सानवी बाहर से जितनी सख्त दिखती है, अंदर से उतनी ही उलझी हुई है। बात का रुख बदलते हुए सानवी ने पूछा, वैसे कृति कैसी है? आज वो रेस्टोरेंट क्यों नहीं आई? बताओ। वो रात घर नहीं आई, रिया ने धीरे से कहा। सानवी का चेहरा तुरंत बदल गया। क्या? उसकी आवाज़ में साफ घबराहट थी। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं रिया, अगर वो परेशान थी तो? मैंने सोचा, रिया ने बीच में ही कहा, शायद किसी फ्रेंड के पास चली गई होगी। असल में तुमने भी तो उसे डांट दिया था, और मैंने भी, शायद इसी वजह से। सानवी ने उसकी बात पूरी नहीं सुननी चाही। उसने तुरंत फ़ोन उठाया और कृति का नंबर डायल किया। स्विच्ड ऑफ, उसने दोबारा कोशिश की, फिर तीसरी बार, लेकिन हर बार वही, फ़ोन नहीं लग रहा था। सानवी का दिल और ज़ोर से धड़कने लगा। उसने बिना कुछ कहे कृति की फ्रेंड सना को कॉल किया। हेलो, सना की आवाज़ आई। सना, कृति तुम्हारे पास है? सानवी ने जल्दी से पूछा। नहीं, सना ने कहा, मैं तो शहर में ही नहीं हूँ, पूरी फैमिली के साथ बाहर गई हुई हूँ। कॉल करते ही सानवी ने रिया की तरफ देखा। अब चिंता उनके चेहरे से साफ झलक रही थी। दोनों बारी बारी से कृति को कॉल करती रहीं, लेकिन कोई जवाब नहीं। वो गुस्से में है, रिया ने कहा, कल जो झगड़ा हुआ था शायद उसी वजह से फ़ोन नहीं उठा रही। सानवी चुप रही, उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। उधर कृति, वो किचन में खड़ी कॉफ़ी बना रही थी, लेकिन कॉफ़ी से ज़्यादा उबल रहा था उसका मन। कुछ भी सही जगह पर नहीं है, वो बड़बड़ाई, एक कप तक ढंग से नहीं मिलता इस घर में। वो इधर उधर देखती, दराज खोलती, बर्तन खिसकाती जा रही थी। किस्मत ही खराब है मेरी, उसने झुंझलाकर कहा। इतना अमीर आदमी है, दो चार नौकर तो रख सकता है, लेकिन नहीं, पता नहीं कैसा दिमाग है। वो कप रखते हुए बड़बड़ाती रही, जहां भी जाओ काम ही काम, यहां भी और वहां भी, मुझे ही सब करना पड़ता है। तभी पीछे से कमरे का दरवाजा खुला, इंदर बाहर आया। ये तुम क्या कर रही हो? उसने कृति को देखते हुए कहा। कृति ने पलट कर देखा। वो अभी तक नाइट सूट में ही थी, बालों को लापरवाही से बांधा हुआ था और हाथों में गीले बर्तन। तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता इंदर, कृति ने छल्ला कर कहा। अगर दीदी इस घर में होती ना, तब पता चलता तुम्हें। इंदर कुछ बोलने ही वाला था कि कृति ने आगे कहा, मैंने तुम्हारे लिए और हम दोनों के लिए ब्रेकफास्ट बना लिया है। इंदर ने थोड़ा असहज होकर कहा, मेरे लिए बनाने की जरूरत नहीं थी, मुझे खुद बनाने की आदत है। कृति ने एक पल उसे देखा, फिर बिना मुस्कुराए बोली, ठीक है। न्यारा तैयार होकर बाहर निकल रही थी। आज उसने एक सिंपल ग्रीन कलर का प्रिंटेड कुर्ता पहना हुआ था, उसके साथ हल्का सा प्लाजो। घुंघराले बालों को उसने क्लच से हल्के से समेट रखा था। वो बहुत सादा लग रही थी, बिना किसी खास सजावट के, मगर उसी सादगी में वो प्यारी लग रही थी। ज्ञान कपूर की नज़र अनायास ही उस पर ठहर गई। वो कुछ कहता उससे पहले ही न्यारा ने कहा, आज हम लोग कैंप में जा रहे हैं। ज्ञान ने खुद को संभालते हुए पूछा, हाँ लेकिन तुम इतनी जल्दी? न्यारा ने फोन स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहा, करण का फोन आ गया है, वो मेरा इंतजार कर रहा है। ज्ञान का चेहरा एक पल के लिए सख्त हो गया। उसने पूछा। इसी बिल्डिंग के नीचे? न्यारा ने सिर हिलाया। नहीं, मैंने उसे मोड़ पर बुलाया है, मैं वहीं पहुंचने वाली हूं। इतना कहकर न्यारा जल्दी जल्दी बाहर निकल गई, बिना ये देखे कि उसके शब्द ज्ञान के भीतर क्या हलचल मचा गए थे। ज्ञान वहीं खड़ा रह गया। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, न्यारा और करण एक साथ जा रहे हैं। वो जानता था कि ये सिर्फ काम है, वो जानता था कि ये सब प्रोफेशनल है, मगर फिर भी उन दोनों को साथ सोच पाना उसके लिए आसान नहीं था। ज्ञान के लिए ये एहसास अजीब तरह से भारी था। ये कैंप उन्हीं के शहर में लगाया गया था, मगर शहर का वो हिस्सा ऐसा था जहां लोग अक्सर नजरअंदाज कर दिए जाते थे। एक बड़ा सा कम्युनिटी ग्राउंड, चारों तरफ ऊंची इमारतें, ट्रैफिक का शोर और बीच में सफेद टेंटों की कतारें। सुबह से ही वहां हलचल शुरू हो चुकी थी। बैनरों पर साफ लिखा था, निशुल्क कानूनी परामर्श शिविर। पास ही नगर निगम और कुछ सामाजिक संस्थाओं के नाम लगे थे। कई लोग रुक रुक कर बैनर पढ़ते, फिर हिम्मत जुटाकर अंदर की तरफ बढ़ते। किसी के चेहरे पर उम्मीद थी, किसी पर झिझक। टेंटों के अंदर लंबी लंबी टेबलें लगी थी। हर टेबल के पीछे अलग अलग फर्म से आए एडवोकेट बैठे थे। कोई फाइलें सजा रहा था, कोई अपने लैपटॉप को ऑन कर रहा था, तो कोई अपने विजिटिंग कार्ड करीने से रख रहा था। यहां नामी वकील भी थे और नए वकील भी। कुछ समाज सेवा के इरादे से आए थे, तो कुछ इसलिए कि शायद उन्हें आगे चलकर कोई केस मिल जाए। लेकिन आज किसी की नियत पर सवाल नहीं था, क्योंकि जरूरत दोनों तरफ थी। कैंप के बाहर बैठने के लिए कुर्सियां लगाई गई थी। पानी के कैन, चाय का छोटा सा स्टॉल और एक हेल्प डेस्क था, जहां से लोगों को बताया जा रहा था कि किस तरह की समस्या के लिए किस टेबल पर जाना है। शहर की औरतों की मौजूदगी खास नजर आ रही थी। कोई साड़ी के पल्लू से चेहरे को ढंके खड़ी थी, कोई बच्चों को साथ लेकर आई थी, तो कोई पहली बार बिना किसी सहारे के यहां तक पहुंची थी। भीड़ ज्यादा नहीं थी, मगर लगातार आती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे लोगों को भरोसा होने लगा हो कि आज यहां कोई सुनेगा, आज यहां बात करने की इजाजत है। कैंप का माहौल औपचारिक होते हुए भी भारी नहीं था। कोई कोर्ट की सख्ती नहीं, कोई सवालों की बरसात नहीं, बस एक जगह जहां शहर के आम लोग बिना डर के अंदर आ सकते थे। करण और न्यारा जब अंदर पहुंचे तो दोनों एक पल के लिए रुक गए। ये वही शहर था, वही सड़कें, वही लोग, मगर आज यहां एक अलग सी ऊर्जा थी, जैसे शहर खुद अपने लोगों की तरफ थोड़ा झुक गया हो। आज का दिन सिर्फ एक शुरुआत था। असली कहानियां, असली दर्द और असली फैसले सब बाद में आने वाले थे। लोगों की मदद की जानी थी, उनकी उलझनों को सुना जाना था। कैंप की तैयारी पूरी हो चुकी थी और धीरे धीरे लोग अंदर आने लगे थे। लेकिन करण के लिए आज का दिन सिर्फ काम तक सीमित नहीं था। वो खुश था क्योंकि आज उसे न्यारा के साथ एक ही जगह पूरा दिन रहने का मौका मिलने वाला था। वैसे तो वो और न्यारा अलग अलग टीमों के लिए काम करते थे। करण श्याम खन्ना की टीम का हिस्सा था और न्यारा ज्ञान कपूर की टीम से जुड़ी हुई थी। ऑफिस में उनकी मुलाकातें ज्यादातर प्रोफेशनल ही रहती थी, मगर आज हालात अलग थे।
प्लीज मेरी सीरीज पर कमेंट करें, साथ में रेटिंग भी दें। आपको मेरी सीरीज कैसी लग रही है मुझे कमेंट में बताएं।